ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने चौथे चरण के सबसे गहरे भूमिगत खंड पर सुरंग बनाने का काम पूरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया और निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के फैसलों के अनुरूप करने का निर्णय लिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन पर वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आपत्तिजनक बयान देने और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। कपिल मिश्रा ने 23 जनवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनावों के सिलसिले में सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक बयान पोस्ट किए थे। इस मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य विकसित दिल्ली के विजन के अनुरूप सतत औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाना था। उन्होंने बताया कि बैठक में औद्योगिक नीति, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार पर चर्चा की गई। इस बैठक में श्री सिरसा के साथ विधायक अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद रहे। दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने 2,500 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। इस परियोजना के तहत आजाद मार्केट से UER2 तक नई सड़कों के निर्माण और आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री खंडेलवाल ने कहा कि ये सड़क परियोजना चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे व्यापारी, निवासी और व्यवसायों को लाभ मिलेगा। दिल्ली नगर निगम के महापौर महेश कुमार ने आज शहर के श्रीराम कॉलोनी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में महापौर ने कहा कि श्रीराम कॉलोनी कम्युनिटी भवन के सामने सीवर का जल भराव एक बड़ी समस्या है। महापौर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस समस्या के स्थायी समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी शासित निगम की दिल्ली की सफाई व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और वह शहर के नागरिकों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है।
हमने तुरंत आदेश दिया है यहाँ पे कि जो भी नाले की सफाई है, आप तुरंत इस पे कार्रवाई करते हुए PWD से 3 दिन के अंदर आप NOC लीजिए और इस हफ्ते के अंदर आप ये पूरा नाला, हमारे JCB के द्वारा हमारी DC से बात होगी कि पूरे नाले को तोड़ा जाएगा और पूरे नाले से जो 15 फीट का जो गाद है, कचरा, वो सारे उसकी बाहर निकाल के और उसकी पूरी क्लीनिंग करी जाएगी, साफ सफाई जाएगी, जिससे पानी की जो निकासी है वो जल्द से जल्द हो सके और क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। और साथ ही यहाँ कूड़े की भी समस्या बताई लोगों ने, तो उसके लिए भी हमने FCTS का हमने यहाँ पर एक प्रावधान रखा है। जल्द ही यहाँ पर एक FCTS बनाया जाएगा, जिसमें जो लोकल जो जनता का जो यहाँ पर जो कूड़ा कचरा आता है, उस FCTS के माध्यम से वहाँ पर सारा उसको रिमूव करा जाएगा।
लक्ष्मी नगर से भाजपा विधायक अभय वर्मा को आज भाजपा विधायक दल का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। दिल्ली विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में आज भाजपा के विधायक दल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें श्री वर्मा को भाजपा विधायक दल का मुख्य सचेतक बनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर श्री सचदेवा ने कहा कि श्री वर्मा दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल का एक जाना पहचाना चेहरा है और उनके पास विधायक होने के अनुभव के साथ ही कानून की भी समझ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि श्री वर्मा कुशलता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज एरो सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर गोल्डन लाइन की इग्नू स्टेशन साइट पर टनल बोरिंग मशीन की सफलता के साथ चौथे चरण के सबसे गहरे भूमिगत खंड पर सुरंग बनाने का काम पूरा कर लिया है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहे। इस उपलब्धि पर मेट्रो को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 23.6 किलोमीटर लंबी ये परियोजना एयरपोर्ट, अस्पतालों व शिक्षण संस्थानों को जोड़ेगी और ट्रैफिक व प्रदूषण कम करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा फिट इंडिया उत्सव आज समाप्त हो गया। 3 दिवसीय इस उत्सव में कई रोमांचक खेल और फिटनेस चैलेंज शामिल थे, जिनमें रस्सी कूद, आर्म रेसलिंग, क्रिकेट बॉलिंग, पुशअप और स्क्वाट प्रतियोगिताएं शामिल थी। एक रिपोर्ट।
भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ आगंतुकों के लिए पोषण और मनोवैज्ञानिक परामर्श सहित निशुल्क स्वास्थ्य मूल्यांकन भी उपलब्ध करा रहे थे। इस उत्सव में अभिनेता आयुष्मान खुराना, पहलवान संग्राम सिंह और कई अन्य खेल हस्तियों ने भाग लिया। फिट इंडिया कार्निवल 3 दिवसीय फिटनेस और वेलनेस फेस्टिवल था, जिसका उद्देश्य एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना, जो फिट इंडिया मूवमेंट के एक स्वस्थ और मोटापे से मुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण के अनुरूप हो। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी गैंग के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के जॉइंट कमिश्नर जतिन नरवाल ने बताया कि ये तीनों शूटर्स रंगदारी के लिए शहर के इलाकों में वारदातों को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में फायर कर इन शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री नरवाल ने बताया कि आरोपियों के पास से कुल 4 हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में इनके पैर में गोली लगी है और इनका इलाज जारी है।
इन 3 में से 2 क्रिमिनल्स जो एक बाइक पर जा रहे थे, इनको चिन्हित किया। पुलिस के द्वारा रुकने का निर्देश देने पर ये रुके नहीं और पुलिस को कार्रवाई के दौरान इनको पकड़ना पड़ा। और पकड़े जाने के उपरांत जब छुपाए गए हथियारों को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा था, उस दौरान इन्होंने पुलिस पर फायर किया और पुलिस एक्शन में क्रिमिनल्स को गोली लगी। पुलिस हैड टू फायर इन सेल्फ डिफेंस।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग के एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक मजबूत वैश्विक व्यवस्था की उपस्थिति न केवल शक्तिशाली देशों को लाभ पहुंचाती है, बल्कि छोटे देशों को जोखिम उठाने और स्थापित मानदंडों को चुनौती देने में भी सक्षम बनाती है। श्री जयशंकर ने कश्मीर पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का जिक्र करते हुए भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लेख किया। उन्होंने इस मुद्दे से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की आलोचना की और ब्रिटेन, कनाडा और अमरीका जैसे देशों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। श्री जयशंकर ने म्यांमार और पश्चिमी देशों में सैन्य तख्तापलट पर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करते हुए वैश्विक मानकों में निष्पक्षता और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रवर्तन निदेशालय गैर सरकारी संगठनों सोरोस आर्थिक विकास कोष और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघनों की जांच के लिए बेंगलुरु में 8 परिसरों में फेमा के तहत तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने खुलासा किया कि सोरोस ओएसएफ को 2016 में गृह मंत्रालय ने जांच के दायरे में था। इसे भारत में गैर सरकारी संगठनों को अनियमित दान देने से रोक दिया गया था। निदेशालय ने कहा कि इस प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए ओएसएफ ने भारत में सहायक कंपनियां बनाई और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और परामर्श शुल्क के रूप में धन लिया। निदेशालय ने कहा कि इन धनराशियों का उपयोग एनजीओ की गतिविधियों को धन देने के लिए किया गया है, जो कि फेमा का उल्लंघन है। ईडी सोरोस, ईडीएफ और ओएसएफ द्वारा लाए गए अन्य एफडीआई फंडों की भी जांच कर रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विधेयक 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत आयकर नियमों पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। सीबीडीटी ने हितधारकों के लिए ओटीपी आधारित सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से सुझाव देने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर लिंक भी दिया है। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और अनावश्यक नियमों को समाप्त करना है, जिससे करदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए कर प्रक्रिया आसान हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए विधायकों को विधान संचालन की प्रक्रियाओं, नियमों और नीति निर्माण में आवश्यक जानकारी से अवगत कराना है। दो दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कार्यशालाओं, संवाद सत्रों और विशेषज्ञों के व्याख्यानों के माध्यम से विधायकों को उनके कार्यक्षेत्र की जटिलताओं, आने वाली चुनौतियों तथा विकास के अवसरों के बारे में बताया जाएगा। श्री बिरला ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये विधान भवन जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का सशक्त माध्यम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधायकों को प्रभावी जनप्रतिनिधि बनने के लिए उन्हें संविधान के प्रावधानों के साथ सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का व्यापक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आज नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने जोर दिया कि विधायकों को सदन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और सदन में गतिरोध से बचना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि असहमति को सार्थक संवाद के माध्यम से गरिमापूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सकारात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पैनल चर्चा और सुशासन, नीति निर्माण और विधायी ढांचे पर केंद्रित कई सत्र होंगे। लोकसभा और भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन ने आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि एआई कोष नामक एक डेटा सेट बनाया जाएगा जो लोकसभा में बहस का किसी भी भाषा में अनुवाद करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि इससे शोधकर्ताओं, संसद सदस्यों और शिक्षाविदों को शोध उद्देश्यों के लिए संसद की विस्तृत बहसों तक किसी भी भाषा में अनुवाद की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य एआई तकनीक का उपयोग करके एक व्यापक एआई आधारित भाषाई भंडार बनाना है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में शिक्षा पर केंद्रित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड सेंटर के बारे में चर्चा की गई। ये पहल आईआईटी दिल्ली और न्यूजीलैंड के सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ती है। इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के अंतर्गत 260,000 न्यूजीलैंड डॉलर के आंशिक छात्रवृत्ति पैकेज की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त एक वर्चुअल इंटर्नशिप कार्यक्रम की भी घोषणा की गई जिसमें आईआईटी दिल्ली के 30 विद्यार्थियों को न्यूजीलैंड की कंपनियों के साथ ऑनलाइन इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा जिससे उन्हें न्यूजीलैंड का कार्य संस्कृति और उद्योग का अनुभव और जानकारी प्राप्त होगी। निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की विभिन्न धाराओं के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के अनुरूप किया जाएगा। ये निर्णय आज नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय, विधायी विभाग के सचिवों और यूआईडीएआई के सीईओ के साथ हुई बैठक में लिया गया। एक बयान में निर्वाचन आयोग ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच परामर्श जल्द ही शुरू होने वाला है। आयोग ने लंबे समय से चली आ रही चुनावी चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज चौथे चरण के सबसे गहरे भूमिगत खंड पर सुरंग बनाने का काम पूरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया और निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के फैसलों के अनुरूप करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।